नमस्कार आदाब दोस्तों, दुनिया गोल है और भूगोल के सवाल भी गोल गोल है, तो घबराने की क्या बात है जब मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क शाला आपके साथ है, जहां भूगोल विषय के विशेषज्ञ आपको देने वाले हैं नए अध्याय की नई सीख। चलिए सुनते हैं उन्हें।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं डॉक्टर राज राजीव चंद्रशेखर सिंह बालिका उच्च विद्यालय वासुदेवपुर मुंगेर मोबाइल वाणी में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के विषय में। यह मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण में और दक्षिणी पठार के उत्तर में भारत का ही नहीं वरन विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। इसे सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान की रचना सतलज गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपित जलोढ़ों से हुई है। इसका क्षेत्रफल 7,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इस मैदान की उत्तर दक्षिण की चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर है। संपूर्ण मैदान में उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम की घाटी वाला क्षेत्र सम्मिलित है। यह मैदान सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उनकी अनेक सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है, अतः यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है। विभिन्न प्राकृतिक कारकों तथा बहने वाली नदियों की प्राथमिकता के आधार पर इस बृहत मैदान को 3 उप विभागों में बांटा जा सकता है। पहला पश्चिमी मैदान यानी वेस्टर्न प्लेन। इस भाग में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की पश्चिमी भाग सम्मिलित किया गया है। संपूर्ण पश्चिमी मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। पश्चिमी मैदान के अंतर्गत थार के मरुस्थल को भी सम्मिलित किया जाता है। इसे पश्चिमी शुष्क मैदान भी कहते हैं, जो 640 किलोमीटर लंबा तथा 160 किलोमीटर चौड़ा है। यमुना नदी के पश्चिम में पंजाब और हरियाणा राज्यों में यह मैदान विस्तृत रूप से फैला हुआ है, जिसमें सतलज, ब्यास और रावी नदियां बहती है। पंजाब का मैदान यह क्षेत्र कहलाता है। यह मैदान चौरस रूप में फैला हुआ है। पंजाब का उत्तरी भाग वारी दुआब, पूर्वी भाग विस्त दुआब, दक्षिणी भाग मालव मैदान तथा दक्षिणी भाग हरियाणा का मैदान कहा जाता है। यह मैदान सिंधु के मैदान का अधिकांश भाग अब पंजाब में चला गया है। दूसरा मैदान मध्यवर्ती मैदान कहा जाता है, जिसे सेंट्रल प्लेन कहते हैं। पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूरब में बंगाल की पश्चिमी सीमा तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा तथा उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी से दक्षिण में पठारी प्रदेश तक औसतन 300 किलोमीटर चौड़ा मध्यवर्ती मैदान कहा जाता है। इसे गंगा का मैदान भी कहते हैं। देश के सबसे महत्वपूर्ण तथा समतल इस मैदान का क्षेत्रफल 357,000 वर्ग किलोमीटर है। OHK स्पेट महोदय के अनुसार 3 उप विभागों में इसे बांटा गया है। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान और तीसरा निचला गंगा का मैदान। तो पहला ऊपरी गंगा के मैदान में यह भाग पश्चिम में दिल्ली से पूर्व में इलाहाबाद तक विस्तृत है। इसका मुख्य भाग गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र है। यह मैदान यमुना, गंगा, शारदा, चंबल नदियों के द्वारा लाए गए अवसादी मिट्टियों से बना है और इसके उदाहरण गंगा यमुना द्वाब, रोहेल खंड का मैदान और अवध का मैदान कहा जा सकता है। दूसरा है मध्य गंगा मैदान। यह इलाहाबाद से भागलपुर, बिहार का अंतिम क्षेत्र तक लगभग 1,62,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें गंगा की सहायक नदियां गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, टोंस तथा सोन बहती हैं। यह मैदान दोमट तथा जलोढ़ दोनों तरह की मिट्टियों से बना है। इसे तीन भू संरचनात्मक इकाइयों में भी बांटा गया है, गंगा घाघरा दुआब, सरयू पार मैदान तथा कोसी का मैदान, और तीसरा है बच्चों निचला गंगा मैदान। इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा प्रदेश आता है जो पश्चिम बंगाल राज्य में फैला है और इसका क्षेत्रफल 79,100 वर्ग किलोमीटर है। इसका अधिकांश भाग बांग्लादेश में पड़ता है और कोलकाता के पास इसकी ऊंचाई मात्र 6 मीटर रह जाती है। और अंतिम तीसरा महत्वपूर्ण मैदान पूर्वी मैदान है, ईस्टर्न प्लेन, जो असम राज्य के सदिया के उत्तर पूर्व से लेकर धुरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा एवं 100 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में मैदानी रूप में फैला हुआ है। इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान के पश्चिमी भागों को छोड़कर सभी ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ी फैले हुए हैं। और बच्चों मैदान के विषय में एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। बराबर प्रतियोगिता में प्रश्न आते हैं भावर और तराई प्रदेश, तो भावर प्रदेश क्या होता है जान लीजिए। जहाँ हिमालय पर्वत और मैदानी प्रदेश एक दूसरे से आकर मिलते हैं, वहाँ पर्वत से निकलने वाली असंख्य धाराएं ने अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों से टूटकर गिरे हुए पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़े काफी मोटाई में जमा दिए जाते हैं। इन कंकड़ पत्थरों से ढका हुआ जो भाग है वो भावर कहलाता है। और तराई प्रदेश क्या है, तो भावर प्रदेश के नीचे के ओर चलने पर जहां लुप्त हुई नदियों का जल धरातल से पुनः ऊपर प्रकट हो जाता है, वह क्षेत्र तराई क्षेत्र का आरंभ होता है। यहाँ विस्तृत भाग में दलदली भूमि पाए जाते हैं जो संपूर्ण रूप से तराई प्रदेश कहलाता है। इन दलदलों के ऊंची ऊंची घासें होती हैं, जैसे कांस, हाथी घास, भावर घास, और महत्वपूर्ण वृक्ष भी मिलते हैं और असंख्य जंगली पशु भी पाए जाते हैं। ये इनमें सामान्य अंतर भी है। और भी प्रश्न आते हैं, बांगर और खादर में आप क्या समझते हैं। तो गंगा के मैदान को धरातल के विचार से दो भागों में बच्चों बांटा गया है, पहला बांगर और दूसरा खादर। इस मैदान के उन भागों को जहां नदियों द्वारा निक्षेपित पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं और जहां सामान्य रूप से नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है, वह क्षेत्र बांगर कहलाता है। बांगर के पुराने जमाओं में कहीं कहीं चूने के कंकरीली मिट्टी भी पाई जाती है। और वहीं नए कछारी भाग जो निचले मैदान है और जहां बाढ़ का जल प्रति वर्ष पहुंचकर नई मिट्टी का परत जमा देता है, वह खादर क्षेत्र कहलाता है। खादर के नाम से यह क्षेत्र पुकारे जाते हैं। गंगा का सारा मैदान बांगर और खादर नामक ऊंची नीची भूमि में बटा हुआ है। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद।
तो दोस्तों ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।